जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौर गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै सदालयै कृष्णाय कृष्णभक्ताय सदभक्ताय नमो। भक्त्या विहीनापराधलक्षितश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयी त्वं शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणाय। मैं सर्वप्रथम अपने परमाराध्यतम श्रील गुरुदेव जी के चरणों में पुनः पुनः दंडवत प्रणति ज्ञापन करता हूँ। पश्चात वैष्णवगण, माताएं और बहनें और बेटियां, कल हमने भक्ति की परिभाषा के संबंध में बतलाया था, जब तन मन वचन इनकी सारी चेष्टाएं और भावनाएं जो मन से लिए आती हैं वो कृष्ण के लिए, प्रीति के लिए, कृष्ण को रुचिकर हो और साथ ही साथ में कृष्ण के लिए प्रीतिकर हो, जिसमें ज्ञान और कर्म का कोई अभिलाषा न हो, कोई भी किसी प्रकार की भगवत प्रेम भगवत भक्ति के अतिरिक्त कोई अभिलाषा न हो और ज्ञान कर्म योग तपस्या इत्यादि के द्वारा आवृत भक्ति न हो, भक्ति ही न हो। इसके लिए मैंने कृष्ण के ही एक अवतार तत्वतः कृष्ण ही जो रामचंद्र जी हैं उनकी कुछ लीलाओं से मैंने उपमा दी, जिसमें भरत जी अपने भावना के अनुसार में, अपनी चेष्टा के अनुसार में रामचंद्र जी को प्रसन्न करने की भी एक चेष्टा कर रहे हैं। राम की कुछ भावना और है भरत जी की, किंतु भरत जी की सारी चेष्टा है कृष्ण के लिए, रामचंद्र जी को प्रसन्न करने के लिए, इसलिए उनके लिए राज्य भी छोड़ दिया है और चित्रकूट में गए, वहां की हमने कथाएं सुनाई। जब उन्होंने गुरु बस जनक जी महाराज जी के मुख से प्रेम का तत्व सुना, बोले जी मेरी आंखें अब खुल गई, अब तक मैं स्वतंत्र होकर के अपनी इच्छा से राम की सेवा करना चाहता था, अब मेरी समझ में आया कि अब तक जो कर रहा था उसमें कुछ कमी है, राम क्या चाहते हैं इसको मैंने विचार नहीं किया, मुझे क्या करना चाहिए राम को प्रसन्न करने के लिए, ये कर रहा था, इसलिए अपनी बात छोड़कर साथ ही साथ में रामचंद्र जी के पास में पहुंचे और उनके चरणों में सिर झुकाया और बोले भैया आप क्या चाहते हैं, चाहते क्या है? मैं कह रहा था ये आप अयोध्या लौट करके राज सिंहासन पर बैठिए, आप कहते थे मैं वन में 14 वर्ष के लिए जाऊंगा, राज्य नहीं लूंगा, अब आपकी इच्छा मैं समझता हूं कि आपकी इच्छा अनुसार मुझे कुछ करना चाहिए, अब अपनी इच्छाएं हमने संपूर्ण रूप से छोड़ दी और आप बतलाइए क्या चाहते हैं। रामचंद्र जी ने कहा ये बात तो तय हो गई, महाराज जनक जी ने ये अनाउंस कर दिया, घोषणा कर दी, भरत की जीत हुई है, इसलिए तुम्हारी जीत हुई है और तुम्हारी इच्छा अनुसार आज मैं हार करके राज्य लेना स्वीकार कर लिया। मैंने अयोध्या का सारा राज्य मैंने ग्रहण कर लिया और मैं राजा हूं और तुम प्रजा हो। अब मैं ये चाहता हूं कि राजा तो मैं हो गया राजी तुम्हारी, किंतु मेरे भी कुछ कर्तव्य हैं, सीता जी की का आदेश झूठा न हो जाए, इसलिए मैं 14 वर्ष के लिए जरा बाहर जा रहा हूं और ये जो राज्य है संपूर्ण रूप से मेरे प्रतिनिधि होकर के सेवक होकर के संभाल, बस यही मेरी इच्छा है। उन्होंने कहा जी तो ऐसा है, आज से आप महाराजा धीराज अयोध्या के कौशल नरेश हुए, मैं आपका सेवक हूं, जैसा आदेश दे रहे हैं वैसा ही करूंगा, किंतु एक बात है, आप अपनी खड़ाऊ दीजिए, वही राज्य का प्रतिनिधि होगा, मुझे अभिमान न हो जाए कि मैं राजा हूं और उसी से आदेश लेकर मैं प्रजाओं का पालन करूंगा आप जैसा कहा। उन्होंने मान लिया और अपनी प्रतिनिधि स्वरूप अपनी खड़ाऊ उनको दे दी और उसी पर रखकर सारे प्रजाओं के साथ में लौट गए, किंतु राजधानी में नहीं गए, कहां रहे? राजधानी के पास में ही एक पहाड़ी जगह, आज भी वो वर्तमान है, नंदी ग्राम मुझे, और वहीं पर छोटी सी झोपड़ी बनाई और वहीं पर रह करके खड़ाऊ की पूजा करते और वहीं से राज्य का संचालन करते, राजमहल में नहीं गए, नहीं लौटे और राजाओं का जो भोग है उसे कभी नहीं भोगे। रामचंद्र जी से वन में रह करके फल मूल खाते हैं, ऐसे ही युति रहे। रामचंद्र अपनी पत्नी के साथ में रहते थे, उनकी पत्नी आई, जराम अपनी पत्नी को लेकर के यदि रह सकते हैं तो नंदीग्राम में इस देश में मैं भी आपके साथ में रहूं। उन्होंने कहा सेवक धर्म बड़ा कठोर है, कौशल्या की सेवा का भार हम लोगों पर, मैं राजा रामचंद्र जी की सेवा का कार्य संभाल रहा हूं और तुम कौशल्या की सेवा का भार संभाल, दोनों मिलकर के चले। एक दिन भी पत्नी का दर्शन नहीं किया मुख, और इस तरह से कठोर बयाजी बनकर वहां रहे और इस प्रकार से एक दिन कैके भी उनके पास में आए, मिलने का समय निकाला, भरत जी ने भी समय दिया। जब आई तो बेटे बेटे कहने लगी, जब बेटा का और पुत्र का तो अब संबंध नहीं तुमसे, आप महारानी कैकई हैं, यही संबंध हमारा है, अब वो तो संबंध खत्म हुआ। तो बेटा मैं मुझे वो राज्य बिच्छू की तरफ में डंक मारता है, वहां पर रह नहीं सकती, मैं पागल हो गई हूं। उन्होंने तुम्हारा यही प्रायश्चित है, जो भगवान के सेवा में विघ्न डालता है उसके लिए ही प्रायश्चित है, अब इस जन्म में हमारा तुम्हारा बेटा मैया का संबंध है। तात्पर्य क्या, जब भगवत भक्ति होती है तो भगवत विरोधी कोई कार्य वो कर नहीं सकता और भगवत विमुख जो विरोधी है उनके कोई संग नहीं। भक्ति में दो बातें हैं, भक्ति के अनुकूल हम ग्रहण करें, भक्ति का प्रतिकूल कोई भी चीज हो, कोई संग पदार्थ वस्तु भाव उनसे हमारा कोई संबंध, भगवान के विरोधियों से हमारा संपर्क है तो इसका मतलब ये भक्ति की बू आपके अंदर देगी। यदि गुरु सदगुरु हमारे हैं और उनका कोई विरोधी हो, भगवत विरोधी हो, तो उसका मुख दर्शन करना है, उसके मुख से गुरु वैष्णव की विरोधी की बातें, अपराधमयी बातें, निंदा की बातें सुनना, यह भक्ति विरोधी, इससे भक्ति के अनुकूल ग्रहण किया गया। और भक्ति के प्रतिकूल को दूर कर दिया जाए। भक्ति के अनुकूल पहले क्या है इस चीज पर विचार करें। भक्ति के अनुकूल क्या चीज है? भक्ति के अनुकूल ये चीज है, साधु संघ में अपना तत्व जानकर जब मैं कृष्ण का दास हूं, कृष्ण को भूल करके इस जगत में करोड़ों जन्मों से अनंत जन्मों से अनादि काल से घूम रहा हूं, कहीं सुख और शांति नहीं है। वैष्णव के अनुरूप से हमने सुना कि यदि हम भगवान का भजन करें, भगवान की सेवा करें, तम सुखी और शांति में रहें। यह सुन करके उसको दृढ़ विश्वास हुआ और पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए। संतों ने बतलाया सबसे पहले का शब्द है तुम्हारा गुरु पदाश्रय करना। यदि लाख जन्म तब ही गुरु पदाश्रय करके भजन नहीं करेगा, तुमको ये भक्ति का प्रारंभिक चरण भी तुम्हें मिल जाएगा। चाहे लाख तुम रसो पटो, इसलिए शुद्ध रूप में गुरु का पदाश्रय करना पड़ेगा। यही इसका पहला स्टेज, यही प्लेटफॉर्म। बिन गुरु भवन भी तरै न होई, ज्यों गिरी शंकर समहु, तद विज्ञानार्थम सगुरु में अभिगच्छे समत् प्राण श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम। यदि कोई अपने कल्याण की बात जानना चाहता है और इस चीज को समझ लेता है, जो संसारिक संसार में वस्तुएं हैं, जो सभी वस्तुएं हैं, आइए पधारिए महाराज जी, दंडवत दिया, आइए आइए आइए, महाराज जी को ले आइए। महाराज जी की बड़ी कृपा भाई, बिना पर्वत का आश्रय लिए ब्रज में गुजारा नहीं, और ये साक्षात हमारे पूज्य पर्वत महाराज जी। आज हम लोगों का एक आश्रय मिल गया, बड़े आनंद की बात थी। और अभी उन लोगों उनसे मुझसे हरि कथा सुनेंगे, मैं दो चार शब्दों में अपना मैं पूरा करूँ। तो मैं बतला रहा था, जब सदगुरु यदि वैष्णव के मुख से ऐसा सुने, जब भक्ति में कैसे प्रवेश हो सकता, तो सबसे पहले बतला आदौ मैंने सबसे पहले गुरु का पता। उत्तम से को जानने के लिए सारे वेदों के साथ साथ को शब्द ब्रह्म को जानने वाले, हमारे सारे संदेहों को दूर करने वाले, और उनको भजन करके भगवत अनुभूति हुई हो और संसार से परम विरक्ति है, ऐसे महापुरुष गुरु पदवाच्य हैं। जिनका पतन होने की संभावना, जो पतन जिनका हो जाता है, भजन में नहीं है, भजन के अनुभूति नहीं है, समस्त शास्त्रों का ज्ञान भी नहीं है, ऐसा व्यक्ति गुरु नहीं। गुरु का अभिनय करने पर वो गिर सकता है। इसलिए कहा दीक्षा इत्यादि करके ग्रहण करके शिक्षा, भजन की शिक्षा होनी चाहिए। जितने परिमाण में आपका भजन होगा, उतने ही परिमाण में आपकी सुतुष्ट पुष्टि खुद खायोनुघात होगी। जितने परिमाण में आपका भजन होगा शुद्ध रूप में, आपकी तुष्टि होगी, जय आत्मा संप्रसद्यति, आत्मा अवश्य ही प्रसन्न होगी। भजन कर रहे हैं हजारों वर्ष से, चित्त चंचल दुखी है, तुष्टि नहीं हो रही, इसका मतलब ये कहीं भजन में गड़बड़ है। भजन करेंगे और तुष्टि नहीं होगी, ऐसा कभी नहीं होगा। खाएंगे भोजन करेंगे और पेट नहीं भरेगा, ये कभी संभव नहीं है। इससे थोड़ा सा भी भजन करेगा तो थोड़ा भी उसको तुष्टि होगी। जितना परिमाण में वो भजन करेगा उतने पर तुष्टि खुद पाए अनुघासम, और संसार के प्रति वैरक्ति होती जाएगी, ये निश्चित रूप में। इस तरह से धीरे 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 भजन करते 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 आदौ श्रद्धा ततः साधु संगत भजन क्रिया इत्यादि के अनुसार में श्रद्धा होगी, फिर निष्ठा होगी, रुचि होगी, आसक्ति होगी, इस तरह से बढ़ेगा। अभी मैंने आप लोगों से भक्ति के संबंध में भरत जी की सूचना दी।
बहुत ही सुंदर है, किंतु मैं इसी के साथ साथ में श्रीमद् भागवत से एक तुलना देकर के और समझा रहा हूं। वो तो रामायण से सुनाया, अब तो श्रीमद् भागवत से अब थोड़ा सा सुना रहा हूं। रासलीला, कृष्ण ने गोपियों को कहा जब आई तो लोग लौट जाओ भर, स्त्रियों का कर्तव्य पति की सेवा करनी, पति लगड़ा लुढ़ला किस सब प्रकार से अयोग्य, धन कमाने भी योग्य नहीं, किसी भी तरह से हो लंगड़ा लूल्हा भी हो अंधा भी, स्त्री का कर्तव्य उसकी सेवा करना है, इसलिए आप लोग घरों में लौट जाइए। बहुत कहने पर भी गोपियों ने उसका उत्तर दिया और वो गई नहीं, कृष्ण को ही समुचित शिक्षा दे दी अच्छी तरह से। वाह वाह मेरे गुरुदेव, ऐसी सुंदर शिक्षा देने वाले हमारे गुरुदेव, ऐसे गुरु सौभाग्य से किसी जन्म मिलते हैं, आज हमारा जीवन धन्य है कि आप जैसे गुरु मिले, इसलिए पहले गुरु की ही सेवा करके तब अपने पतियों की सेवा करेंगे, क्योंकि जहां गुरु और भगवान हैं वहां पर गुरु की ही सेवा करना हमारा कर्तव्य है, भगवान का पीछे पति का पीछे और लोगों का पीछे, इसलिए गुरु। और यदि आप हमारी सेवा ग्रहण नहीं करते हैं तो आप इसके लिए दायी होंगे, क्योंकि शास्त्रों में ऐसा ही कहा गया है, भगवान ने ऐसा कहा है। क्या कहा? ये जथा मांग, ये नहीं कहा कि आप भगवान हैं, किंतु जो जैसा भजन करता है भगवान के अनुरूप ही उसको भजन का फल देते हैं, उसी अनुसार से उसका भजन करते हैं। तो यदि हम जैसे आपकी सेवा करें आप हमारी सेवाओं को ग्रहण नहीं किया, इसका मतलब है आप धर्म से चूक हैं। अंत में कृष्ण हारे और गोपियां लौटी नहीं, रास भी हुआ और ठीक रास के बीच में अंतर ध्यान हो गए। अब गोपियां ऊपर दृष्टि से बिलबिला रही, किस लिए बिलबिला रही हैं, रो रही हैं, किस लिए? रोने का कारण क्या है? साधारण वे गिरह कृष्ण के गिरह को नहीं चाहते, अपने सुख के लिए यहां पर ऐसा ही प्रतीत होता है, किंतु ये हम लोगों की धारणा से अतीत है, इसलिए गोपियां रो रही हैं, अपने सुख के लिए नहीं रो रही, कृष्ण को प्रसन्न नहीं कर सकी, कृष्ण की सेवा पूरी नहीं हुई, उनको कहां ऐसी सुंदर सरस सेवा मिलेगी, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। अंत में कृष्ण आए, प्रकट हुए, प्रकट होने के बाद में गोपियां विभिन्न प्रकार से उनसे मिल रही हैं। जब मिलना हो गया तो एक गोपियों ने पूछा उनसे, अहो सखे आप तो बड़े प्रेमी हैं, तो एक प्रश्न आपसे है, जरा इसका उत्तर दे दें हम लोग संतुष्ट हो जाएंगे। प्रश्न क्या था? कोई प्रेम करने पर प्रेम करता है, साधारण रीति, किसी से प्रेम करो वो भी, कुत्ते से प्रेम करो कुत्ता भी प्रेम करे, ये साधारण रीति। और कोई ऐसा है जो प्रीति करो ना करो वो सबसे प्रीति करता है, और तीसरा प्रीति करो न करो वो किसी से भी प्रीति नहीं करता। आ रहा है समझ में? एक प्रीति करने पर, कोई प्रीति नहीं करने पर भी प्रीति करता, और कोई प्रीति करो न करो। संसारिक लोग बनियागिरी ऐसे ही करते हैं। कृष्ण ने उत्तर दिया, प्रेम के बदले जो प्रेम करते हैं वो बनिया है, बनियागिरी का, चार पैसा दे दो, चार पैसा का मसाला बांध करके तुम्हें दे देगा, ये बनियागिरी। यदि तुम ये चाहती हो कि तुम लोग हमसे प्रेम करती हो हम भी तुमसे करें, तो मैं ये बनिया नहीं, यह प्रेम प्रेम नहीं है। इसलिए भगवान से ये मत सोचो, ये हम भजन कर रहे हैं भगवान इसका फल क्यों नहीं देता, वो क्यों नहीं करता, यह बनियागिरी हो गई। कोई भी अन्य अभिलाषा कृष्ण की सेवा के अतिरिक्त और कोई भी भावना हृदय में कामना न रहे, ये भी भक्ति का एक लक्षण है, पूरा लक्षण नहीं, बहुत से लक्षण है। तो एक ये लक्षण है, भगवान से अपने प्रेम के बदले अपने भजन। तुम सुनो, सब लोग एक मिनट इधर उधर ध्यान, मैं तो खड़ा कर दूंगा, जो कोई बात इधर उधर करेगा खड़ा कर, उठ करके खड़े हो जाओ, दो मिनट का हमें समय दो और सारा दिन बातचीत करो। हमारी बातें बुरी लग रही हैं, मत बुरा मत लगा, तो बनिया जी जो प्रेम करने पर, जो प्रेम करे ना करे तो भी वो प्रेम करता है। हे सुमध्यमा, ये हैं पिता और गुरु। पिता के चार बच्चे हैं, सभी पिता की क्षमा नहीं करते, किंतु वो सबके प्रति प्रीति रखता है। विशेष करके जो दुष्ट होने लगते हैं उनके प्रति उनकी प्रीति अधिक हो जाती है, कि ये सुधर जाए बेटा, निस्वार्थ प्रीति कुछ है। मैया बाप का ये, और गुरु, गुरु का विरोध करने पर भी गुरु कभी नहीं चाहता जिसका कल्याण हो, और यदि ऐसा नहीं है तो गुरु गुरु नहीं है। गुरु ऐसा नहीं होता, बनिया नहीं होता गुरु। गुरु शिष्य को अपना भोग्य नहीं समझता, कभी भी भोग्य नहीं समझता। ऐसा नहीं कोई बैंडेज रखता है उस पर, बाइंडिंग रखता है उस पर, ऐसा निर्देश नहीं देता तू हमारे छोड़ करके कहीं नहीं जाना, हरि कथा सुनने मत जाना। इसका मतलब है कि यदि हमसे कोई अच्छा कोई हरि कथा बोले तो उधर में ये चला जाएगा, और वो जो पैसा हमें दे रहा है, अपनी सेवा जो दे रहा है, अब नहीं देगा, इसलिए अपना भोग्य समझता है। ऐसे गुरु गुरु नहीं है, उनको इसका इस बात का नहीं है हमारे शिष्य का कैसे उन्नति हो, कैसे कृष्ण के चरणों में परम उन्नत उत्तमा भक्ति हो, ये नहीं विचार करते। उनको है ही नहीं है खुद ही, तो दूसरों को क्या करेंगे। उनको प्रेम का कोई ज्ञान नहीं, भक्ति का कोई ज्ञान नहीं, इसलिए अपने शिष्यों को वो चाहते हैं ये हमारी धन संपत्ति है, और कोई दूसरा न हड़प ले और वो दूसरी जगह न चल जाए। ये उनको सब समय डर बना रहता है, इसलिए वो कंट्रोल करके रखते हैं कि हमारा कोई भी शिष्य यदि हमसे दूसरे के यहाँ जाना चाहता है वो फिर हमारे पास न आए और उसका महा अपराध हो जाएगा। वो जो कर रहे हैं वो अपराधी हैं, वो अपराधी हैं। इसलिए माँ का पिता में कुछ लौकिक दया होती है, वो हो सकता है कि किसी पुत्र को भी मार डाले। गुरु को भी ऐसा देखा गया है कि गुरु अपने शिष्यों को, जो गुरु को शिष्य मारने की चेष्टा करता है प्राण से, ऐसे भी बहुत से हैं कलयुगी, तो गुरु भी उनसे जान से मरवा देता है। ये कलयुग के गुरु हैं, उनके लिए कृष्ण का ये नहीं कहना, किंतु सदगुरु ऐसा होता है जो प्राणी मात्र का कल्याण करता है। कृष्ण का जैसे कोई विरोधी नहीं है, कृष्ण किसी के विरोधी नहीं है, सबको अपनी भक्ति देना चाहते हैं, किंतु हम नहीं लेते हैं दूसरी बात, वैसे गुरु ऐसा ही होता है, परम करुणामय होता है, वो भगवान की करुणा का घन विग्रह होता है, मूर्तिमान विग्रह होता है, उसमें तनिक स्वार्थ की बू नहीं रहती। बहुत से इसके उदाहरण है, उदाहरण देने में बहुत समय लग जाएगा, इसलिए मैं संक्षेप में चल रहा हूं। इसमें तुम लोग ऐसे ही हो, मैं प्रेम करूं ना करूं किंतु तुम हमसे प्रेम करते, ये कहने का तात्पर्य किंतु छिपा हुआ है, उसकी अभिव्यक्ति नहीं की। और तीसरे जो हैं, जो प्रेम करे ना करे, किसी से भी प्रेम नहीं करते, ये लोग एक प्रकार के नहीं चार प्रकार के होते हैं। एक होते हैं आत्माराम, दूसरे होते हैं आप्तकाम, तीसरे होते हैं गुरुद्रोही, और चौथे होते हैं अकृतज्ञ। ये चार, पहले आत्माराम, आत्मा में जो रमण करने वाले हैं, संसार को समझ लिया है, ये संसार नश्वर और दुखपूर्ण है, इसकी कोई भी वस्तु हमें सुख नहीं दे सकती, तनिक भी ऐसा समझने के बाद में भगवान का भजन करते 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 स्वाभाविक रूप में भक्ति के प्रभाव से उनको संसार से विरक्ति हो गई है। ये एक प्रकार से ये भगवान में रमण करते हैं। भगवान आत्मा के भी आत्मा है, एक तो शरीर में आत्मा है और भगवान क्या है, आत्मा की आत्मा। उस आत्मा की आत्मा कृष्ण के भावों में रमण जो करते हैं उसको कहते हैं आत्मा। दूसरी बात आत्मकाम, जिनकी सारी कामनाएं परिपूर्ण हो चुकी हैं, जिसको अब कोई कामना नहीं है भगवत भक्ति के अतिरिक्त, ऐसे आत्मकाम। पहले में है आत्माराम, कौन, पहले जीवन में सुखदेव गोस्वामी, आत्मारामस्य मुनयो कुर्वन्ति अहेतुकीं भक्तिं यथा। उनके गुणों से आकृष्ट होकर के ऐसे ऐसे आत्माराम जब उससे उन्नत अवस्था में पहुंच जाते हैं तो उनका निरंतर प्रेममय भजन करते हैं। तो पहले जीवन में सुखदेव गोस्वामी, पहले जीवन में सुख सनातन सनंदन चारों कुमार, ये आत्माराम है। आत्मकाम, आत्मकाम भी इनको कहा जा सकता है, जिनको कोई भी कामना नहीं है। यदि किसी को भगवत भक्ति की कामना है तो उसे क्या कहेंगे, उसको भी आप तो काम ही कहेंगे, उसे ये ऊपर में चला जाएगा, ये प्रेमी भक्त हो गया इनसे ऊपर। तीसरे अकृतज्ञ, जो की हुई भलाई को नहीं मानते हैं, वो लोग प्रेम भी किया जाए, माता पिता सारा जीवन उनकी सेवा की, मैया ने उनको पेट में धारण किया, गर्भ में धारण किया, सेवा की, और जब तक उनके पंख न लगे, पढ़ाई लिखाई पूरी हुई, किसी नौकरी में लग गए, मैया बाप ने शादी कर दी और फुर उड़ गए, ये अकृतज्ञ है। अकृतज्ञ भी दो प्रकार के, पहला अकृतज्ञ जो सेवा तो नहीं करता किंतु कुछ उल्टी सीधी नहीं करता, और दूसरे होते हैं अकृतज्ञ में भी बिना किसी कारण के सेवा तो करते भी नहीं, उनको मारते पीटते धमकाते और निंदा करते हैं। अहेतुकी, अहेतुकी एक और एक सहेतुकी, जो लोग अपने माता पिता को देखते हैं कि अब माता पिता वृद्ध हो गए, अब इनसे हमको कुछ लेना देना नहीं, सब कुछ माता पिता ने लिख पढ़ करके दे दिया और अपना रोजगार कर रहे हैं, वो माता पिता को अलग कर देते हैं सेवा में। और कुछ ऐसे होते हैं जो उनका विद्रोह करते हैं, दिन भर खांसता रहता है, हमारे बच्चे अभी सो नहीं पाते, हम दिन भर परिश्रम करते हैं, अरे तुमको याद नहीं बचपन की, ये लोग कैसे हैं, अहेतुक नहीं ये सहेतुक है, गुरुद्रोही ये अकृतज्ञ। और गुरुद्रोही, गुरु का द्रोह आचरण करने वाले, गुरु गुरु वस्तु को देने वाले और उनके प्रति द्रोह आचरण करे, कैसे, जो वैष्णवों को देख करके सम्मान नहीं करते, ऊंच करके अभिनंदन नहीं करते, चलते समय उनके पीछे पीछे नहीं जाते, उनकी निंदा करते हैं, कभी कभी उन्हें मारते हैं, ये छह प्रकार के अपराध हैं वैष्णव के। जिस गुरु ने वैष्णव ने भगवान के भजन करने को सिखाया, उन लोगों के प्रति ऐसी जो भी भावना कोई निंदा करता है, केवल गुरु ही नहीं वैष्णव मात्र हमारे गुरु हैं, जो भजन करने वाले सभी हमारे गुरु हैं, जो एक नाम कभी जीवन में कर दिया उसको अपना इष्ट गोष्ठी का व्यक्ति मान करके मन ही मन आदर करो, और यदि वह दीक्षित है तो काय और मन दोनों से शरीर से प्रणाम करके और मन भी दिया करो, और जो भजन विज्ञानन्य मन निंदा प्रति संगलब्धा, जो कि अष्टकाली लीला भजन करने वाले हैं, किसी की भी निंदा नहीं करने वाले हैं, ऐसे यदि उत्तम यदि वैष्णव हैं तो सर्वस्व उनके चरणों में निर्धार करके अपना प्रियतम समझकर उनकी सेवा में सब समय लगाओ। ये तीन प्रकार के वैष्णवों के प्रति कर्तव्य हैं। तो ऐसे जो नहीं करने वाले हैं वो सब गुरुद्रोही हैं। गोपे ने इशारा किया, आप इन चारों ये पांच प्रकार के वो और दो सात और एक आठ प्रकार के जो आपने बतलाया, इन लोगों में से आठों में से आप कौन हैं? गोपियों की धारणा है जो वो किसी न किसी में बाध्य होकर के कहें। कृष्ण ने हंसते हुए मुस्कुराते हुए कहा, मैं इनमें से कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं। कैसे? देखो, मैं प्रेम के बदले प्रेम नहीं करता, प्रेम के बदले, तो इसलिए तुम लोग समझती हो कि मैं इन चारों कैटेगरियों में से किसी में एक में हूं। या कहूंगा आत्माराम, आत्मकाम, अथवा अकृतज्ञ, अथवा गुरुद्रोह। पहले तो आत्माराम नहीं है। ये कैसे? आत्माराम नहीं है। हाँ, मैं नहीं हूं। कैसे? यदि आत्माराम होता तो रात के लिए तुम लोगों को बुलाता और फिर तुम्हारे पहिया पड़ता और फिर मैं चला गया था और फिर आकर के फिर तुम लोगों को मना रहा हूं, ये आत्माराम का काम है? ये तो नहीं। इसलिए मैं आत्माराम में, हाँ, एक रूप में हूं। क्या है? कृष्ण की आत्मा राधा जी है, जैसे हम लोगों की आत्मा कृष्ण है, उस कृष्ण की भी आत्मा। इसलिए आत्मा में रमण करने वाले